नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जमशेद घराजेदागी की पुस्तक सिस्टम्स थिंकिंग मैनेजिंग केओस एंड कॉम्प्लेक्सिटी अ प्लेटफॉर्म फॉर डिजाइनिंग बिजनेस आर्किटेक्चर, संगठनात्मक प्रबंधन और सामाजिक प्रणालियों पर केंद्रित एक विश्लेषणात्मक पुस्तक है। इसका उद्देश्य किसी कंपनी को विभागों, प्रक्रियाओं और पदों के अलग अलग जोड़ के रूप में नहीं, बल्कि परस्पर निर्भर उद्देश्यों, लोगों, निर्णयों और संसाधनों की जीवित व्यवस्था के रूप में समझना है। पुस्तक जटिलता को केवल तकनीकी कठिनाई नहीं मानती। इसके अनुसार संगठन में काम करने वाले लोगों की अपनी मंशाएं, धारणाएं और विकल्प होते हैं, इसलिए कारण और परिणाम का संबंध अक्सर सीधा नहीं होता। घराजेदागी सिस्टम्स थिंकिंग की पूर्ववर्ती धाराओं की समीक्षा करते हुए तीसरी पीढ़ी का दृष्टिकोण रखते हैं, जिसमें मानव एजेंसी और सामाजिक संदर्भ केंद्रीय है। पुस्तक का व्यावहारिक लक्ष्य बिजनेस आर्किटेक्चर को इस तरह डिजाइन करना है कि बदलाव के अनचाहे प्रभाव समझे जा सकें, विभिन्न हितों के बीच तालमेल बने और संगठन अपनी जटिल समस्याओं का समग्र उत्तर विकसित करे। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, तीसरी पीढ़ी की सिस्टम्स थिंकिंग में मानव इच्छा को केंद्रीय स्थान। पुस्तक का विशिष्ट बौद्धिक आधार सिस्टम्स थिंकिंग की तीन पीढ़ियों का अंतर है। पहली पीढ़ी मुख्यतः नियंत्रण, गणितीय मॉडल और पूर्वानुमेय यांत्रिक प्रणालियों से जुड़ी थी। दूसरी पीढ़ी ने संगठन को डिजाइन की जाने वाली इकाई के रूप में देखना शुरू किया। घराजेदागी के लिए तीसरी पीढ़ी का निर्णायक प्रश्न यह है कि उन प्रणालियों को कैसे समझे जिनके घटक मनुष्य हैं। मनुष्य मशीन के पुर्जों की तरह स्थिर निर्देशों का पालन नहीं करते। वे अर्थ निकालते हैं, लक्ष्य बदलते हैं, गठबंधन बनाते हैं और किसी परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए सामाजिक संगठन का मॉडल केवल प्रक्रियाओं, चार्टों या वित्तीय संकेतकों से पूरा नहीं हो सकता। लेखक इस चुनौती को मानव विषयपरकता को अधिक स्पष्ट और विचारणीय बनाने की कोशिश के रूप में रखते हैं। इसका अर्थ लोगों को एक समान व्यवहार वाली वस्तु मानना नहीं, बल्कि उनके अलग उद्देश्यों को मॉडल में शामिल करना है। प्रबंधन के लिए निहितार्थ स्पष्ट है। यदि किसी नई नीति को केवल दक्षता के आधार पर सही माना जाए, लेकिन उससे प्रभावित लोगों की धारणाओं, प्रोत्साहनों और स्वायत्तता को न समझा जाए, तो परिणाम अपेक्षा से भिन्न हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण संगठनात्मक डिजाइन को केवल संरचना बदलने के बजाय साझा उद्देश्य और संबंधों को पुनर्गठित करने का काम बनाता है। दूसरा, नॉनलीनियर अंतरसंबंध और अनचाहे परिणामों की समस्या। घराजेदागी विश्लेषणात्मक सोच और सिस्टम्स थिंकिंग के बीच अंतर को अंतरसंबंधों की प्रकृति से स्पष्ट करते हैं। साधारण विश्लेषण में किसी एक कारक का प्रभाव जानने के लिए बाकी कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। यह तरीका उन स्थितियों में उपयोगी हो सकता है जहां तत्व अपेक्षाकृत स्वतंत्र हो, लेकिन संगठनात्मक और सामाजिक तकनीकी प्रणालियों में ऐसा अलगाव प्रायः संभव नहीं होता। वेतन नीति, बिक्री लक्ष्य, सूचना प्रणाली, अधिकार वितरण और ग्राहक सेवा जैसे तत्व एक दूसरे को बदलते रहते हैं। किसी एक संकेतक को सुधारने का प्रयास दूसरे संकेतकों को प्रभावित करता है और वे प्रभाव फिर मूल निर्णय पर वापस असर डालते हैं। यही नॉनलीनियर, परस्पर परिवर्तनीय कपलिंग जटिलता का मुख्य स्रोत है। पुस्तक का तर्क है कि प्रबंधक यदि केवल स्थानीय समस्या को ठीक करते हैं, तो वे व्यापक प्रणाली में तनाव या विकृति पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी इकाई की गति बढ़ाने का दबाव गुणवत्ता, सहयोग या सीखने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। इसलिए उपयोगी प्रश्न केवल यह नहीं है कि कौन सा विभाग खराब प्रदर्शन कर रहा है, प्रश्न यह है कि वर्तमान परिणाम पैदा करने वाली प्रतिक्रिया श्रृंखलाएं क्या है। यह ध्यान कारणों की एकल सूची से हटाकर पैटर्न, विलंब और पारस्परिक निर्भरता की जांच की ओर ले जाता है। तीसरा, आइडियलाइज डिजाइन द्वारा वांछित भविष्य से शुरुआत। पुस्तक में आइडियलाइज डिजाइन जटिल परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में उभरता है। इसका मूल विचार वर्तमान व्यवस्था की छोटी मरम्मत से शुरू करना नहीं है। पहले यह कल्पना की जाती है कि यदि मौजूदा संगठन समाप्त हो जाए और उसे आज की समझ के आधार पर फिर से बनाया जा सके, तो वांछित व्यवस्था कैसी होगी। यह भविष्यवाणी से अलग है। भविष्यवाणी संभावित भविष्य का अनुमान लगाती है, जबकि आइडियलाइज्ड डिजाइन उस भविष्य को स्पष्ट करता है जिसे डिजाइनर और हितधारक पसंद करेंगे। इस प्रक्रिया में सीमाओं को पूरी तरह अनदेखा करने का आग्रह नहीं है। पहले इच्छित गुणों, उद्देश्यों और संबंधों को स्पष्ट करने से बाद में संसाधन, चरण और समझौते अधिक विवेकपूर्ण ढंग से तय किए जा सकते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि टीम मौजूदा विभागीय सीमाओं और विरासत में मिली प्रक्रियाओं को अपरिवर्तनीय मानने से बचती है। वह पूछ सकती है कि ग्राहक अनुभव, निर्णय अधिकार, ज्ञान प्रवाह और जवाबदेही को किस रूप में होना चाहिए। फिर वर्तमान और वांछित स्थिति के बीच अंतर को परिवर्तन कार्यक्रम में बदला जा सकता है। फिर भी यह पद्धति तभी उपयोगी है जब विविध हितधारकों की भागीदारी हो। केवल शीर्ष नेतृत्व की आदर्श छवि यदि कर्मचारियों और ग्राहकों की वास्तविकताओं से कटी हो तो वही दृष्टि नए प्रतिरोध और नई जटिलता का कारण बन सकती है। चौथा, संगठनों के यांत्रिक, जैविक और समाज सांस्कृतिक रूपों का भेद। घराजे दागी संगठनात्मक प्रणालियों को समझने के लिए तीन प्रकारों का भेद प्रस्तुत करते हैं। यांत्रिक प्रणाली को नियम आधारित, प्रक्रियात्मक और एल्गोरिदमिक रूप में देखा जा सकता है। इसमें व्यवहार को अपेक्षाकृत स्पष्ट निर्देशों से नियंत्रित करने की कल्पना प्रमुख होती है। दूसरा रूप जैविक या एकल जीव जैसा है, जहां संगठन को एक केंद्रीय उद्देश्य वाली इकाई माना जाता है। तीसरा और पुस्तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप बहुबुद्धिमान समाज सांस्कृतिक प्रणाली है। इसमें संगठन के सदस्य अपने अपने उद्देश्य, ज्ञान और चयन क्षमता रखते हैं। वे केवल केंद्रीय लक्ष्य के निष्क्रिय साधन नहीं है। यह वर्गीकरण किसी कंपनी पर स्थायी लेबल लगाने के लिए नहीं है। इसका उपयोग यह पहचानने के लिए है कि प्रबंधन किस प्रकार की वास्तविकता मानकर निर्णय कर रहा है। यदि नेतृत्व बहुबुद्धिमान संगठन को यांत्रिक प्रणाली की तरह चलाने का प्रयास करे तो अत्यधिक नियंत्रण, सूचना छिपाना और अनुपालन का दिखावा पैदा हो सकता है। इसके विपरीत साझा उद्देश्य, संवाद और उचित स्वायत्तता की व्यवस्था अलग परिणाम दे सकती है। वर्गीकरण यह भी बताता है कि तकनीक अपने आप संगठन का प्रकार तय नहीं करती। एक ही डिजिटल उपकरण नियंत्रण बढ़ाने या सहयोग बढ़ाने दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। इसलिए बिजनेस आर्किटेक्चर का प्रश्न केवल संरचना और सॉफ्टवेयर चुनने का नहीं, बल्कि मानव संबंधों, निर्णय अधिकार और संस्कृति के अनुरूप डिजाइन चुनने का है। अंत में, बिजनेस आर्किटेक्चर को विभागीय सुधार नहीं, समग्र डिजाइन मानना। पुस्तक बिजनेस आर्किटेक्चर को केवल सूचना प्रौद्योगिकी की रूपरेखा या संगठन चार्ट का पर्याय नहीं बनाती। इसका व्यापक अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें उद्देश्य, संरचना, प्रक्रियाएं, मापदंड, सूचना और लोगों के संबंध मिलकर संगठन का व्यवहार बनाते हैं। यही समग्रता इसे केवल किसी एक विभाग की दक्षता सुधारने वाली प्रबंधन पुस्तकों से अलग करती है। लेखक के दृष्टिकोण में किसी समस्या का सुरक्षित समाधान तभी तैयार हो सकता है जब उसके पूरे संदर्भ को देखा जाए। बिक्री की समस्या उत्पादन, प्रोत्साहन, वितरण, उत्पाद डिजाइन और ग्राहक संबंधों से जुड़ी हो सकती है। इसलिए अलग अलग सुधार परियोजनाओं के बीच समन्वय आवश्यक है। पुस्तक में प्रस्तुत अमेरिकी कंपनियों के केस अध्ययन इस बात को व्यावहारिक संदर्भ देते हैं कि प्रणालीगत विचार केवल सैद्धांतिक भाषा नहीं है। उनका महत्व किसी एक कंपनी के नुस्खे में नहीं, बल्कि यह देखने में है कि वास्तविक संगठनों में परिवर्तन अनेक परस्पर जुड़े निर्णयों का विषय होता है। पाठक के लिए उपयोगी अनुशासन है, पहले प्रणाली की सीमा और उद्देश्य स्पष्ट करना, फिर प्रमुख अंतर संबंधों की पहचान करना और अंत में डिजाइन विकल्पों को व्यापक प्रभावों के आधार पर परखना। यह तरीका त्वरित समाधान का वादा नहीं करता, लेकिन जटिल समस्याओं को गलत ढंग से सरल बनाने के जोखिम को कम करता है। निष्कर्ष में, सिस्टम्स थिंकिंग मैनेजिंग केओस एंड कॉम्प्लेक्सिटी उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो संगठनात्मक बदलाव को केवल रणनीति, दस्तावेज, प्रक्रिया अनुकूलन या तकनीकी कार्यान्वयन तक सीमित नहीं मानते। बिजनेस आर्किटेक्ट, प्रबंधक, योजनाकार, इंजीनियर, संगठन विकास विशेषज्ञ और प्रबंधन के गंभीर विद्यार्थी इससे लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कुछ वैचारिक धैर्य चाहिए, क्योंकि पुस्तक जटिलता को लोकप्रिय सरल सूत्रों में नहीं बांधती। इसके बजाय यह पाठक को उद्देश्य, परस्पर निर्भरता, मानव एजेंसी और डिजाइन के संबंध पर व्यवस्थित ढंग से सोचने को कहती है। व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक स्थानीय सुधार और पूरे संगठन पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच अंतर देखना सीख सकता है। आइडियलाइज्ड डिजाइन वांछित भविष्य की चर्चा के लिए एक उपयोगी भाषा देता है, जबकि नॉनलिनियर संबंधों पर जोर अनचाहे परिणामों के प्रति सावधान बनाता है। समान श्रेणी की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान यह है कि यह सिस्टम्स थिंकिंग को केवल फीडबैक लूप या मॉडलिंग तकनीक के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। घराजे दागी इसे सामाजिक प्रणालियों के डिजाइन की पद्धति बनाते हैं, जहां लोगों के अपने उद्देश्य और व्याख्याएं निर्णायक हैं। इसलिए यह त्वरित प्रबंधन उपाय खोजने वालों के लिए आसान मार्गदर्शिका नहीं है, लेकिन जो पाठक जटिल संगठनों में टिकाऊ परिवर्तन, साझा उद्देश्य और व्यापक संदर्भ को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह एक गंभीर और उपयोगी वैचारिक आधार प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जमशेद घराजे दागी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।